sıradan
निबंतम पीते रहने पर
सत मुखम्बो चित्तम आपके कमल मुख से निकला हुआ हरि कथा अमृतम कृष्ण कथा का अमृत अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा मृत्यु द्वारा पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही है। तात्पर्य, 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे, किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए श्रमिक मुनि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया, अतएव मैंने उसे उस मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप दे डाला। किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकना जैसी कोई वस्तु नहीं होती। सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्मा या आध्यात्मिक आत्मा है और उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार कृष्ण कथा के अमृत से सर्वदा अनिभिज्ञ है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन दार्शनिकों, धर्मविदों तथा सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य है। कृष्ण तथा कृष्ण कथा में निश्चित रूप में विशेष आकर्षण है, इसलिए परब्रह्म कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षक कहलाते हैं। अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है और अंबुज का अर्थ है कमल। सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलाकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही है, कर रही थी। कहा भी गया है, मतिर्न कृष्ण परतो स्वतोवा मिथो विपद्य ग्रह ब्रताना अदांत गोपीर विशतम तमिश्रम पुनः पुनः शर्विता चर्वनाना। भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नारकीय स्थिति की ओर बढ़ते जाते हैं और एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं। उनमें न तो किसी के उपदेश से न अपने आप नहीं इन दोनों के द्वारा कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद। संप्रति सार मानव समाज चर्वित चर्वण करने में लगा है, पुनः पुनः चर्विता चर्वणाना। लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरा शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी, इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावनामृत नितांत आवश्यक है, किंतु जब तक सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का न तो आनंद लिया जा सकता है, नहीं आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंद में जीवन भोगा जा सकता है। जब हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, वे सारी भौतिक इच्छाओं को परित्याग कर देते हैं, किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते, वे कृष्ण भावनामृत जीवन को मस्तिष्क धुलाई ब्रेन वॉशिंग या मन नियंत्रण मानते हैं। एक और जहां भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते वहीं अभक्तों को यह देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। ओम ज्ञान तिमिरन्नस्य जनंजना श्री चैतन्य मनोविष्टम् भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम् ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजितापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातम् सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आध्यात्मदेश सारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभादुसुते देवी प्रणामे हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भागवत के दशम स्कंध के प्रारंभ में परीक्षित महाराज अपनी योग्यता को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों कृष्ण कथा को सुन सकते हैं? श्री प्रभुपाद जी प्रथम स्कंध में लिखते हैं, जिस प्रकार से अगर माता पोटेंट हो तो माता फर्टाइल हो और पिता पोटेंट हो तो उससे क्या होगा, बच्चा उत्पन्न हो जाएगा। तो वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं परीक्षित महाराज वो फर्टाइल थे सुनने के लिए और सुखदेव स्वामी पोटेंट थे बोलने के लिए, तो उनके दोनों के सम्मिश्रण से कृष्ण कथा के रूप में प्रकट हो गए। भगवान अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं और यहां कृष्ण यहां प्रकट होने जा रहे हैं परीक्षित महाराज की तीव्रता के कारण। इतनी आसक्ति हिती कृता सुनने के लिए तो जो भौतिक बाधाएं है जो जीवों के लिए स्वाभाविक है, भूख लगना प्यास लगना ये स्वाभाविक है, इससे कोई दूर हट नहीं सकता। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज कह रहे कि मैं भूखा नहीं हूं प्यासा नहीं हूं, निद्रा से मैं आसक्त नहीं हूं, निद्रा मुझे बाधा नहीं देती है, इसलिए कृपा करके कृष्ण कथा संक्षिप्त में मत बताना, विस्तृत रूप में उसको बताते जाओ। जैसे कि कोई कह रहा था बद्रीनारायण भगवान कह रहे थे कि मंदिर, खास करके वो अमेरिका की चर्चा कर रहे थे, वो मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो वहां वो कह रहे थे कि एक मंदिर ऑलरेडी है सैन डिएगो में, उनको मैंने पूछा कि आप इस मंदिर को बंद करके दूसरा मंदिर बनाओगे, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि लोग भौतिक जगत में 20 मिनट अगर दूरी हो मंदिर अगर उससे ज्यादा हो गया तो मंदिर जाना नहीं चाहते, 20 मिनट के लिए ड्राइव करेंगे, अगर उसके आगे हो गया तो फिर वो जाना नहीं चाहेंगे। इसलिए कह रहे थे कि हर 20 मिनट दूरी पर एक मंदिर होना चाहिए। गिरिराज महाराज कह रहे थे, हम उनसे मिले थे, वो कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि मुंबई में 16 मंदिर होने चाहिए, क्योंकि जू में कौन जाएगा, ये प्रश्न पैदा होता है, इतना दूर कौन जाएगा, लोग हमेशा प्रश्न करते हैं। और मंदिर किस कारण के लिए, गिरिराज महाराज बता रहे थे, मंदिर में भगवान का दर्शन करो, लेकिन जितने बिल्डिंग पे जू में अलग अलग बिल्डिंग के ऊपर टेरेस पे अलग अलग भाषाओं में प्रवचन होना चाहिए, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में और अंग्रेजी में, ताकि सब लोगों को कृष्ण कथा सुनने का एक अवकाश प्राप्त होना चाहिए। तो वैसे ही कहा जाता है कथा सुनने के बारे में 20 मिनट के ऊपर अगर कथा हो जाए, लोग फिर पहले मिनट में जो सुना तो भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति कम होने के कारण। जैसे गौरव गुरु बता रहे थे आत्मा सीरियल में लोग प्रवचन करते हैं, तो वही चल रहा है 7 साल से, और लोग कहते हैं बहुत अच्छा प्रवचन था ये जो आपने दिया, क्यों, जो पहला हुआ वो भूल गए। यानी कि स्वाभाविक है, भौतिक शरीर होने के कारण, भौतिक मन होने के कारण, भौतिक बुद्धि होने के कारण, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही अभद्रता। तो इसको जो तीव्रता से सुनना ये लोगों में न होने के कारण 20 मिनट के ऊपर, जैसे एक प्रीस्ट वो प्रवचन के समय बोल रहे थे कि उनका गाल कट गया था दाढ़ी करते समय, तो उन्होंने कहा कि मैं दाढ़ी करते समय प्रवचन के बारे में सोच रहा था इसलिए मेरा गाल कट गया। तो प्रवचन के बाद किसी ने उनको खत लिखा कि अब दाढ़ी करते समय प्रवचन के बारे में सोच रहे थे कि प्रवचन आपको किस प्रकार से देना है, तो आगे इसलिए आपका गला कट गया, क्या हो गाल कट गया, लेकिन आप क्या करो आगे, आप प्रवचन के बारे में मत सोचो दाढ़ी करते समय, क्यों, नहीं तो आपका कट जाएगा, आप इसके बारे में सोचो प्रवचन को कैसे काटना है, क्योंकि आपका प्रवचन बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा वो लिख कर भेजे थे, वो खुद बोल रहे थे ऐसा। तो इसलिए हम देखते हैं हमारी जो तीव्रता है सुनने के लिए कृष्ण कथा, 20 मिनट के ऊपर मन इतर बितर हो जाता है, चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है, क्यों, क्योंकि भगवान के प्रति रुचि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भूख और प्यास को भूल नहीं पाएंगे, भूल सकते हैं, अगर किसी में रुचि हो और दूसरा पर्याय नहीं हो। दूसरे महायुद्ध के बारे में प्रभुपाद जी लिखते, एक बार एक विमान अटक गया था किसी जगह पर, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, तो लोग क्या कर रहे थे, जितना भी चॉकलेट्स वगैरह थे प्लेन में उसको रेशन करके खा रहे थे कितने दिन तक। तो आगे सोचने लगे अब क्या करें, काफी लोग भूखे थे, तो कोई मर गया तो फिर उसका मांस खाने के बारे में सोच रहे थे। और हमने देखा भी है, अगर किसी वस्तु के प्रति आसक्ति हो, जैसे एक व्यक्ति थे साधारण परिवार के थे, उनकी इच्छा हो गई कि किसी धनिक जो बेटी है उनसे शादी करना, ये संभव नहीं था, और हरे कृष्ण मंत्र का भी आश्रय ले रहे थे इस कार्य को पूरा करने के लिए, तो दिन भर जब कर किया करते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हमेशा, हम देखा दिन भर जब नींद नहीं, पानी नहीं, पीना नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, दादा गोपीनाथ के सामने खड़े रहते थे और कंटिन्यूसली जब किया करते थे। तो भक्त लोग सोचते थे इनको गोस्वामी बन गए हैं, लेकिन इच्छा क्या है, गोदास बनने के लिए, गोस्वामी के कार्य कर रहा है लेकिन गोदास बनने की इच्छा, अल्टीमेटली देवामृत को उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, चार चार दिन के लिए कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि आसक्ति थी। जहां दूसरा पर्याय नहीं हो और जहां आसक्ति है, तब अपने आप व्यक्ति इस स्तर पर आ सकता है। स्वाभाविक है। शिक्षा स्पेक्ट्रम प्रभु कह रहे थे, वो एयरफोर्स के लिए टेनिस खेलते थे, भारत के टीम में थे वो टेनिस खेलने के लिए। और दिल्ली में गर्मी के मौसम में खेलना टेनिस, अगर रुचि नहीं हो तो हम देखते भुनाई में चले जाओ, दिल्ली में केवल स्टेशन में खड़े होने से अपने आप अंदर से एसी हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, वो कहते इतना कठिन होता है। लेकिन क्योंकि रुचि होने के कारण सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक खेलते थे और उनको कुछ नहीं लगता था। और जो पत्थर फोड़ते हैं, क्योंकि अगर पत्थर नहीं फोड़ेंगे तो पेट नहीं भरेगा, वो लोग भी गर्मी में क्या करते, पत्थर फोड़ते रहते। उसमें स्त्रियां भी होती है। क्यों? क्योंकि पर्याय नहीं है। जहां पर्याय नहीं हो और जहां रुचि हो तो फिर भौतिक बाधाएं कभी प्रभावित नहीं करेंगे। तो यहां परीक्षित महाराज को रुचि होने के कारण, कृष्ण कथा में रुचि होने के कारण अपने आप कृष्ण के प्रति आकर्षण, इसको आर्टिफिशियली करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होगा नहीं। जब कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, कृष्ण के लीलाओं को सुनेंगे सकारात्मक दृष्टि से, तो कृष्ण कथा ऐसा है, शुक्र रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सुनने में, अगर गलती से भी एक्सीडेंटली दशम स्कंद के श्लोक हमारे कानों में प्रवेश करते हैं तो क्या होगा? तो कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाएगा, कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, उनकी गति ऐसी हो गई, गलती से दशम स्कंद के जो श्लोक है उनके कान में आ गए। वो तो ब्रह्मपुत्र स्तर पर थे, आत्मा रामश्च मुनियो, उन्होंने अच्छा और बुरा इसके आतीत हो गए थे। लेकिन जब व्यासदेव जी ने जो लकड़ी काटने वाले लोग, उनको श्लोक सिखाया था भगवान के स्तुतियों के बारे में, और उसको जब उन्होंने सुना, सुखदेव गोस्वामी आ गए वापिस पूछने, लेकिन ये कहां से सुना आपने, किसने सुनाया? जिस पिता को उन्होंने छोड़ दिया था बचपन में, पुत्रे थी तन्मये तया तरोही तरोहु दिने दुष, वो भागने लगे तब उसके पीछे पीछे भाग रहे थे व्यासदेव, और वो चिल्ला रहे थे सुखदेव सुखदेव, और सारे जो पेड़ है वो प्रतिध्वनि कर रहे थे सुखदेव सुखदेव कर रहे थे। फिर भी सुखदेव गोस्वामी रोके नहीं, वो चले गए। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मेरे पिताजी इन श्लोक के रचयिता है, वो वापिस आ गए अपने पिताजी के पास। लेकिन घर के आसक्ति के कारण नहीं, कृष्ण कथा को श्रवण करने हेतु। इसलिए दशम स्कंद जो है, हमें जानना चाहिए कि इसको सुनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन के अंदर क्या योग्यता थी भगवद गीता सुनने के लिए? अर्जुन प्रामाणिक थे। प्रामाणिक होने के नाते, देखिए भौतिक जगत में लोग अगर जब उनको कुछ बाधा होती है, कठिनाई होती है, उसका भी फिलॉसफी बना देते हैं। एक फिलॉसफर था, उसने कहा कि मैं भगवान हूं, और भगवान होने के नाते उन्होंने जो इसमें पर्वत के अंदर जो वॉल्केनो इरप्शन होता है, क्या कहते हैं उसको, ज्वालामुखी होती है, उसमें उन्होंने प्रवेश किया कि उसको लगा भगवान है, तो जल गया, स्वाभाविक है। तो लोग क्या करते हैं, अपने अनुभव के अनुसार अलग अलग सिद्धांतों को बनाते हैं। कोई मैथमेटिशियन था, उसने कहा कि मैथमेटिकली वी कैन प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और मैथमेटिकली वी कैन प्रूव द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान के अस्तित्व को और भगवान के जो न होना, ये दोनों हम मैथ्स के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, यानी कि नाच भगवान से बड़ा है और उनके नाच के जो सिद्धांत क्या था कि मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार मैं कम से कम 110 साल के लिए जीना चाहिए, लेकिन वो जब 42 साल के थे तब वो मर गए, मैथ गलत हो गया उनका। तो इसी कारण हम देखते हैं भौतिक जगत में लोग जब अपने अनुभव के अनुसार जब सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं और भगवान के बारे में ऐसा वर्णन करते हैं, निश्चित है कि वो भ्रमित रहेंगे, वो गीता सुनने के लिए भागवत सुनने के लिए योग्य नहीं है। अर्जुन वैसा ही कर रहा था अपने अनुभव के अनुसार, जब उन्होंने देखा भीष्म को, द्रोण को देखा, द्रोणाचार्यों को देखा, देखकर उसका फिलॉसफी हो गया कि देखो कितना बेकार है, कि क्या होगा परिवार के लोगों को, इसके पहले इतने सारा युद्ध किया था, इतने लोगों को मारा था, तब उसको याद नहीं आया उनके परिवार को क्या होगा, लेकिन अब याद आने लगा और उन्होंने फिलॉसफी बनाया। और कृष्ण उनके सामने कुछ नहीं बोल सके, लेकिन उसका सिद्धांत उसको क्या किया, उसको भ्रमित कर दिया। और जब उनका सिद्धांत उनको भ्रमित कर दिया तब तो अर्जुन कहने लगे कि कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव, नम्र होकर उन्होंने कहा कि मैं मेरे कृपणता के कारण इतना दुर्बल बन गया हूं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, अब मैं आपका शिष्य बना हूं, मुझे कृपा करके सुधार। तो कृष्ण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, मैं अगर कुछ बोलूंगा तुम और कुछ बोलेगा, मित्रों का लक्षण यही होता है, सुनते नहीं है, सुनाते रहते, इसलिए बकबक चलता रहता मित्रों के बीच में, कोई अधिकार का स्थान नहीं लेता। तो कृष्ण ने कहा मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, अगर मैं कुछ बोलूं तो मेरे से डबल बोलेगा, इसलिए तुम चले जाओ राज के पास, वो तुमको सुनाएंगे, वो साधु है, वो संत है, वो सुनाएंगे। अर्जुन ने कहा नहीं, आप ही सुनाओ, अब मित्रता नहीं बचा है, आप मेरे स्वामी हो, गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं युद्ध करो, युद्ध करो, राज्य प्राप्त हो जाएगा, सारा आपका दुख भूल जाओगे। अर्जुन ने कहा नहीं, अपि त्रैलोक्य राजस्यम, अगर मैं तीनों राज्य को प्राप्त कर लूंगा, तीनों लोगों का राज्य प्राप्त कर लूंगा, फिर भी मेरी जो चिंता है, मेरा दुख दूर नहीं होगा, केवल आपसे सुनने से ही मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए प्रथम स्कंद में रूप गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास जब आए सुनने के लिए, वो जो सुनना है तस्मात भारत सर्वेश भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य इच्छा भयम, कि भय के कारण परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज में भय नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि अत्र प्रसक्त भयम आसुदत्त, कि भय के कारण मैं अनासक्त बन गया हूं। किसका भय है? मृत्यु का भय, और इसलिए इसके अलावा और किसी अन्य कारण के लिए मैं आपके पास नहीं आता कथा श्रवण करने के लिए। अभी मृत्यु आ रहे हैं 7 दिन के अंदर, तो मैं कथा श्रवण करना चाहता हूं, नहीं तो मैं आपके पास नहीं आता। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते ब्रेन वॉश के बारे में, लोग इतने ब्रेन वॉश हो गए हैं भौतिक वस्तुओं के कारण। भौतिक कथा में और कृष्ण कथा में अंतर क्या है? भौतिक कथाओं को श्रवण करने से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कई लोग, कई बच्चे लोग जब ये एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सुपरमैन का, कोई अगर सॉफ्ट ड्रिंक पीने से क्या होगा, वो हवा में उड़ने लगता है, बिल्डिंग से कूद ही मारो, तो इसको किसी ने देख लिया और एक्चुअली में उसने जंप किया उधर से, तो उसकी हड्डी टूट गई, स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे एडवर्टाइजमेंट को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कथा क्या करता है? वो प्रभावित नहीं करता, बल्कि प्रेरणाओं को जागृत करता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता सुनने के बाद कहा अब जैसी आपकी इच्छा वैसे करो, उन्होंने उनको प्रभावित नहीं किया, ब्रेन वॉश नहीं किया, बल्कि उनके ब्रेन को जागृत कर दिया, अब आपकी इच्छा है किस प्रकार से व्यवहार करना है। वैसे यहां परीक्षित महाराज वो सुखदेव गोस्वामी को आश्वासन दे रहे हैं कि मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयार हूं, मैं प्यासा नहीं हूं, मैं भूखा नहीं हूं, मुझे निद्रा है, वो बाधा नहीं देता। और ये सुनते ही शुद्ध गोस्वामी परीक्षित महाराज की प्रशंसा करते हैं शौनकादी ऋषियों के सामने, देखो ये कितना महान है, कृष्ण कथा सुनने के लिए कितनी इसकी तीव्रता है। हमारे में ऐसी तीव्रता नहीं है तो फिर हमारी योग्यता क्या है सुनने के लिए कृष्ण कथा? वो कृष्ण की कृपा है। जैसे भागवत महाभारत में कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए उनको सुनाने के लिए शांति दूत बनकर, और सीधे विदुर के पास गए, विदुर ने उनको भोजन खिलाया और विदुर कहते भगवान ये आपका जाना दुर्योधन के पास योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो योग्य नहीं है, उसके अंदर योग्यता नहीं है आपके कथाओं को सुनने के लिए, आपके उपदेश उसके कान में नहीं जाएंगे, बल्कि वो क्रोधित हो जाएगा। और विदुर जी अलग अलग गुणों का नहीं दुर्गुणों का वर्णन करते हैं दुर्योधन का। वो कहते दुर्योधन क्रोधी है, क्रोधी व्यक्ति को कृष्ण कथा सुनाना कोई लाभ नहीं है, क्योंकि क्रोध के कारण उसको सुन नहीं पाएगा। इसका पहला दुर्गुण है, वो क्रोधी है इसलिए उसको सुनने से वो सुनेगा नहीं, मत सुना। दूसरा, दुर्योधन उसके अंदर इतना अहंकार है, वो दूसरों के वचनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? उसको लगता है कि सब कुछ वो जानता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने के लिए योग्य नहीं, इसलिए आप मत जाओ। और तीसरा, दुर्योधन हमेशा दूसरों को धोखा देता रहता है, धोखा देने वाले कृष्ण कथा सुनने के लिए योग्य नहीं, इसलिए आप मत जाओ उसको सुनाने के लिए। ऐसे 10 से 12 दुर्गुणों का वर्णन करते हैं जो हमारे सबने हैं। तो ऐसे लोग विदुर जी कहते हैं कथा सुनने के लिए योग्य नहीं है, तो इनको मत जाओ सुनाने के लिए, आपका समय की बर्बादी हो जाएगी। हम योग्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो दुर्योधन की अयोग्यताओं का वर्णन किया विदुर जी ने और कहा कि वो कथा नहीं सुनेंगे। आप ही परिणाम जानते हो सुनने से क्या होगा, सुनाने से क्या होगा, मैं भी जानता हूं उनको सुनाने से क्या परिणाम होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इतिहास में क्या हुआ, भगवान कृष्ण गए सुनाने के लिए। ये हमारे लिए एक आशा का स्थान है। जैसे किसी ने कहा, अगर भगवान सब कुछ जानते हैं, वर्तमान भूत और भविष्य सबको जानते हैं, तो फिर स्वतंत्रता इसकी चर्चा कैसी होगी? अगर हमारे में स्वतंत्रता भगवान ने दिया है, इंडिपेंडेंस हमको दिया है, तो फिर भगवान सब कुछ जानते हैं, हम क्या करेंगे? तो फिर स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो गया? एक कृष्णा नोज एवरीथिंग, सो वेन द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फिर स्वतंत्रता का है? भगवान सब कुछ जानते हैं, हम क्या करेंगे, तो इसका अर्थ हो गया कि हमारे में स्वतंत्रता नहीं है। आपने ऐसा प्रश्न किया भी होगा, आपने ऐसे प्रश्न सुना भी होगा, इसका उत्तर क्या है? हाँ, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान जानते हैं कि हम सबसे बड़े मूर्ख हैं और मूर्खता को जारी रखेंगे, मूर्खता हमारी परंपरा है। लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या आशा है? ये है महाभारत की कथा। तो जहां प्रेम हो, जहां दया हो, जहां आशा हो, वहां ज्ञान ढक जाता है। भगवान ने कृष्ण के अंदर एक ऐसी आशा थी कि दुर्योधन बदलेगा। जानते थे कि दुर्योधन नहीं बदलेगा, ज्ञान के अनुसार जानते थे कि बदलेगा नहीं, लेकिन एक आशा थी। जब भगवान के अंदर ऐसी आशा होती है, दया होती है, तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? देखिए, जब ज्ञान को ढक गया हो, अज्ञान से नहीं, जब ज्ञान प्रेम के कारण, दया के कारण और आशा के कारण ढक जाता है, वो जीव के लिए एक अवकाश मिल जाता है। योग्यता नहीं है जीव के अंदर, साधक के अंदर कोई योग्यता नहीं है कृपा सुनने के लिए, वो दुर्योधन के समान ही है। लेकिन कृष्ण के भक्त और कृष्ण एक आशा रखते हैं, हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन आएगा, तब युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान को, देखो इसमें कोई योग्यता नहीं कृष्ण कथा सुनने के लिए, कितना भाग्य था दुर्योधन का और एक धनुकासुर, उसको ऐसा भाग्य मिला था कि स्वयं कृष्ण उसको कथा सुनाने वाले थे। योग्यता नहीं थी, विदुर ने कह दिया कि योग्य नहीं सुनने के लिए। तो भगवान क्या कहते हैं विदुर जी को, विदुर जी को कहते कि आप जो कह रहे हो मैं मानता हूं वो सही है, लेकिन दीर्घ मेरा कर्तव्य है। भगवान कहते हैं विदुर जी को, देखो अगर कोई कुछ गलत कहता गलत करता हो, गलत करने तक गलत का फल नहीं मिलेगा, गलत सोचने से भगवान कहते कि उसको उसका फल नहीं मिलता, परंतु अच्छा सोचने से, अच्छा करने के बदले, करने के पहले ही अच्छा सोचने से अच्छा करने का फल मिल जाता है, कृष्ण कह रहे। इसलिए कहते मेरा कर्तव्य है कि मैं जाकर प्रयास करूं, और प्रयास करने से अगर प्रयास मेरा सफल न भी हो जाए लेकिन प्रयास का फल मुझे मिल जाएगा, सफलता का फल मिल जाएगा अगर मैं विफल भी हो जाऊं। भगवान स्वयं ऐसा सोच रहे, वो किसके बारे में सोच रहे, कर्तव्य के बारे में। कर्तव्य में यश मिले या न मिले, कर्तव्य करना महत्वपूर्ण है, कर्तव्य करने में यश का भी लाभ हो जाता है। तो मैं जानता हूं कि दुर्योधन नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी एक आशा है, मुझे किसका लाभ मिलेगा, प्रयास करने का लाभ मिल जाएगा। इसलिए जीव जो साधारण जो योग्य नहीं है, जो फर्टाइल नहीं है, उसमें सीड डालने से पत्थर पर बीज डालने के समान है, वो स्प्राउट नहीं होगा। जैसे जला हुआ धान्य हो, अगर उसको हम जमीन में डालेंगे उसे फसल नहीं निकलेगा, जमीन अच्छा है लेकिन सीड क्या है, वो जला हुआ। वैसे हमारी गति है, जले हुए फर्टाइल नहीं है, जितना भी कृष्ण कथा प्रवेश करने दो तो उसमें क्या होगा, वो फर्टाइल, वो सीड फसल नहीं देगा। लेकिन क्योंकि दया के कारण, कृपा के कारण, प्रेम के कारण, कर्तव्य के कारण संत साधु और भगवान वो योजनाओं को बनाते रहते हैं और वो कथाओं को सुनाते रहते हैं। और जब इस कथाओं को श्रवण जबरदस्ती से करते हैं, जैसे एक बार इंद्रदुम्न महाराज कीर्तन के लिए गए थे, हरिनाम करते करते किसी गांव में गए, बीच के ऊपर कीर्तन किया, वापिस आगे प्रभुपाद जी ने पूछा हाउ वाज द कीर्तन, हाउ वाज द प्रीचिंग, तो उन्होंने कहा कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन था। प्रभुपाद जी ने कहा व्हेन डिड आई से कि प्रीचिंग इज ईजी, मैंने कब कहा कि प्रचार बहुत आसान है, तो क्या हुआ। तो उन्होंने कहा हम लोग हरिनाम कर रहे थे, फिर एक बूढ़ी वो जब कीर्तन सुनने लगी उसको इतना गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, अपने कानों को बंद कर दिया जबरदस्ती से, सुनना नहीं चाहती थी वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम तो इतना लंबा है, इतना सुदृढ़ है, उसके हाथों को निकाल देना चाहिए था ताकि जबरदस्ती से सुने, उसको लाभ हो जाएगा। इसलिए स्वाभाविक है कि जीव सुनना नहीं चाहता कृष्ण कथा, वो कीर्तन को नहीं सुनना चाहता। हम लोग जब एक बार हम लोग पुस्तक वितरण करने के लिए जाते थे, नासिक में गए थे, नासिक में जो शालीमार स्क्वायर पे हम लोग बस खड़ा किए थे, जगन्नाथ जी थे, यही गौर नेता भी थे, और हमारे पास बहुत अच्छा प्रसाद था घी में बनाया हुआ, और एक कुष्ठ रोगी उधर आ गए अपने ट्रॉली लेकर, उसे ना बैठ कर आते, उसमें आया, उसने देखा गुस्से से भगवान को, कोई प्रेम नहीं था, गुस्से से देख रहा था, और उसको हमने प्रसाद दिया, मैंने खुद दिया प्रसाद, उसने लिया प्रसाद फेंक दिया नीचे और उसके ऊपर से अपनी गाड़ी चलाई। लेकिन फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए, कम से कम उसने प्रसाद को स्पर्श कर दिया। ये है जैसे पता नहीं प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं खानी, एक बार कोई साधु किसी घर पे भिक्षा मांगने के लिए गए और वहां जो भिक्षा देने वाली स्त्री उसने किसी को दिया नहीं था और उसने उसके पति के साथ झगड़ा भी हुआ था, गुस्से में थी, और जैसे साधु ने कहा मां भिक्षां देहि, उसको इतना गुस्सा आया तो चूल्हे से उसने क्या किया, राख निकला और आकर सीधे साधु के ऊपर फेंका, लो उसको। तो साधु ने कहा कल आऊंगा फिर से मैं। तो कहने लगे तुमको शर्म नहीं आता मैं तेरे ऊपर राख फेंक रही हूं और फिर कल आने की बातें कर रहे हो। तो साधु ने क्या कहा, साधु ने क्या कहा, उन्होंने कहा कम से कम देने की वृत्ति है, क्या दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपके हाथ से कुछ तो निकल रहा है तो जरूर है कल कुछ ना कुछ निकलेगा, कल नहीं तो परसों, परसों आज राख निकला कल कुछ धान्य भी निकल जाएगा। यानी कि साधुओं का लक्षण होता है कि ये सकारात्मक चीजों को देखना, नहीं तो कथा सुनने के लिए दोनों वक्ता और श्रोता दोनों योग्य होना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी वरिष्ठ महाराज। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे साथ में ऐसा नहीं है, इसलिए साधु प्रयास करते रहते कुछ ना कुछ। जैसे हमारे एक भक्त ने उदाहरण दिया था कि जीव कथा सुनने के लिए कैसा है, जैसे अगर कोई बीमार है जिसको क्षय रोग हो गया, जिसको क्षय रोग हुआ है और तीव्र गति से क्षय हुआ है, गंभीर है, सुकड़ा हो गया, उसमें कोई शक्ति नहीं है, खाना हजम नहीं करा सकता, उसको खाना खिलाओ सब निकल जाएगा ऊपर से और नीचे से, अजीर्ण हो जाता है। तो उसके लिए मेडिसिन क्या है, उसके मेडिसिन है घी देना, अगर घी दो, घी देने से क्या होगा, फिर से ज्यादा अजीर्ण बढ़ जाएगा। लेकिन घी का एक स्वभाव है, घी चिपक जाता है, 1 किलो 20 ग्राम घी खिलाओ 15 ग्राम निकल जाएगा, लेकिन 5 ग्राम इधर उधर चिपक जाएगा शरीर के अंदर। तो धीरे धीरे अगले दिन उसको फिर से 20 ग्राम खिलाओ, इस बार 7 ग्राम चिपक जाएगा क्योंकि पहले चिपका हुआ है। इस प्रकार से उसका शरीर बढ़ता जाएगा, हमारी गति ऐसी है। कृष्ण कथा हम सुनेंगे घंटे के लिए, उसमें केवल 1 मिनट चिपक जाएगा, कुछ कुछ जोक चिपक जाता है, कथा सुन भूल जाता है लेकिन जोक चिपक जाता है। और उसका जो मर्म है जब सही वातावरण आ जाता है तब समझ जाता है, हाँ ऐसा कुछ कहा था डिवोटी ने और ये इससे संबंधित है। जब सुन रहे थे तब वो संबंध नहीं समझ में आता, केवल जोक समझ में आता, लेकिन जब वातावरण आ जाता है फिर वो समझ में आ जाता है। जैसे जयद्रथ महाराज जी ने बद्रीनारायण को उन्हें कहा था, जयद्रथ महाराज कथा करते हैं न्यूयॉर्क रथ यात्रा के समय, और कोई दो स्त्री आ गई क्वेश्चन आंसर बूथ में, बहुत मोटे थे वो, और जयद्रथ महाराज कह रहे थे, किसी दूसरों को कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो, वो जोर से बोल रहे थे, जोर से उन्होंने पॉइंट किया कि आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो। ये दो स्त्री आगे आकर उन्होंने सुना कि आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो, उन्होंने कितना बड़ा रिलीफ, क्योंकि इतने बड़े मोटे थे उनको शरीर लेकर घबरा पड़ता था, उनको अच्छा लगा कि मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं। तो बद्रीनारायण को कहते देखो कि कृष्ण ज्ञान जो कृष्ण के बारे में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, केवल इतना है कि आप शरीर नहीं हो, इतना सुनने से, क्योंकि उनका वातावरण ऐसा था, उनका शरीर ऐसा था, उनको इतना अच्छा लगा, व्हाट अ रिलीफ। तो यहां परीक्षित महाराज के लिए वातावरण ऐसा हो गया है कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है, तो इसलिए कृष्ण कथा हर एक शब्द उनके लिए महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि हमें उसका महत्व हम जानते नहीं है, हमको लगता है कि मुझे अन्य कुछ करना है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अज्ञान यानी कि क्या, अज्ञान यानी कि ये सोचना कि परम सत्य से अलावा और कुछ विशेष बात है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है फिर कृष्ण कथा में रुचि नहीं आती है। लेकिन जब भगवान ऐसा वातावरण बनाते हैं, परीक्षित महाराज के लिए खास बना है, हमें एक कृष्ण कथा सुनने के पहले भगवान का जन्म कैसे हुआ देवकी के गर्भ में, उसके पहले ये सब कुछ सुनना है। परीक्षित महाराज ने कैसे भगवान को अपने जीवन में लाया, भागवत का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित महाराज के पास भगवान कैसे आ गए, देवकी के गर्भ से भगवान आए लेकिन परीक्षित महाराज के लिए कैसे भगवान आए, वो उत्तरा के गर्भ में उनका अवतार हुआ, गर्भ से अवतार हुआ और गर्भ में अवतार हुआ। पहले इसको समझना कि गर्भ में कैसे भगवान का अवतार हुआ, परीक्षित महाराज के भावनाओं में से कैसे भगवान का जन्म हुआ, अर्जुन के चिंतन में भगवान का जन्म कैसे हुआ, उद्धव के चिंतन में भगवान का जन्म कैसे हुआ, इनको सब सुनने के बाद जब दशम स्कंद को आते हम लोग, तो वहां का जो श्रवण है उसमें सुनने में एक अलग प्रकार का आनंद आ जाता है। इसलिए भागवत ये प्रभुपाद जी की देन है, हम योग्य नहीं सुनने के लिए। भागवत केवल परमहंस संहिता है, जो निर्मत पड़ा है वही लोग सुन सकते हैं। तो हमको कैसे मिल गया? कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, अरे ये व्यक्ति भक्ति में आया ही कैसे? जैसे हमारे मंदिर में एक डिवोटी आए थे, एक डिवोटी बन रहे, तो उनको देखकर उनके पुराने मित्र ने देखा, उन्होंने कहा कि ये कैसे आया इधर, ये संभव नहीं आने के लिए, मैं इसको जानता हूँ ये क्या क्या करता था। तो किसी दूसरे ने कहा उसको, हमको ये चर्चा करनी थी कि हम लोग कैसे आए, हम लोग भक्ति में कैसे, उसकी बात छोड़ दो, हम लोग कैसे, हम लोग भी योग्य नहीं। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी और उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो क्या कर रहे हैं, दया के कारण, कृपा के कारण, प्रेम के कारण यहाँ आकर जो सुनने के लिए योग्य नहीं है उनको जबरदस्ती से उनके हाथ पैर बंद करके उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं। और जब ऐसे कृष्ण कथाओं को सुनते हैं कुछ ना कुछ चिपक जाता है और धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के समय लोग अलग अलग इच्छा से आते हैं मंदिर, देखते चलो क्या चल रहा है, कोई चोरी करने के लिए भी आ जाता है। लेकिन ऐसे भी कृष्ण कथाओं को सुनकर, ऐसे बहुत सारे कहानी है, जैसे बद्रीनारायण को हुआ है एक कहानी सुनाकर, कल मैं सुना नहीं लगता है, न्यूयॉर्क में 26 सेकंड एवेन्यू में जहां प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया था सब कुछ हरे कृष्ण आंदोलन, वहां पीछे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है और वो एरिया सब न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन में खास करके हर शुक्रवार की रात और शनिवार की रात लोग इतना सारा पार्टी करते हैं, सुबह शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। एक दिन हम लोग उठकर स्नान करके जब हमारे मंदिर की ओर जा रहे थे, वहां मंदिर में गेस्ट हाउस भी है, बाहर के लोग भी रहते हैं उधर, तो बाहर से लोग आ रहे थे वहां मंदिर के गेस्ट हाउस में, पूरा रात भर वो जागे थे, सोने के लिए जा रहे थे। तो वहां पीछे अपार्टमेंट है, वहां एक फैमिली रहती है और ये व्यक्ति हमेशा दिन भर बाहर में बैठा रहता है और हरे कृष्ण लोगों को गाली देता रहता है कि तुम लोग इतना सारा आवाज करते हो, हमारा नींद खराब करते हो, हमको सोने नहीं देते हो। वहां हर शुक्रवार हर मंगलवार हफ्ते में 3 दिन लोग प्रसाद का वितरण करते भक्तगण। फिर एक दिन यह व्यक्ति आ गया, अमेरिकन व्यक्ति आ गया, उसने कहा कि जानते हो क्या क्या हो गया, झगड़ा करने में होशियार हो, अगर एक भक्त से पूछा जानते हो क्या क्या हो गया, बोले क्या हो गया कि मुझे एक बेटी होगी और रो रही थी जोर जोर से और उसके मुंह से पहला शब्द क्या निकला, हरे। वो गुस्सा कर रहा था कि देखो मेरी बेटी को भी आपने क्या कर दिया, ब्रेनवॉश कर दिया, जन्म लेते ही पहला नाम से किसका ले रही हो, राधा रानी का नाम ले रही, वो जानता नहीं था कि राधा रानी का नाम। वो घनश्याम प्रभु करके ब्रह्मचर्य मुझे बता रहे थे कि गुस्से से आ गया उनसे बात करने के लिए, जानते हो क्या हो गया, क्योंकि बार बार सुनते 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 न सुनने की इच्छा होने पर भी सुनने के कारण उस भावना से उन्होंने प्रोक्रिएट किया और बेटी आते ही पहला शब्द क्या उसके मुंह से जब बोलने लगी, हरे। यह है कृष्ण मंत्र का प्रभाव और इसको सुनाना, कृष्ण कथा को सुनाना और जबरदस्ती से सुनना। कभी कभी हम पढ़ते हैं और आज पढ़ लिया और कल से भूल जाते हैं। तो कभी कभी लोग भक्त लोग खास करके कहते हैं कि प्रभु जी पढ़ने से क्या लाभ है, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता। तो किसी ने कहा कि आपने जो खाया 35 साल तक आपको याद है, 35 साल के पहले आपने क्या खाया था, कोई याद नहीं, सांभर खाया था, इडली खाया था, डोसा खाया था, रोटी उसकी कोई प्याज नहीं है, लेकिन खाना आपने बंद किया क्या? खाना बंद नहीं किया, खाते रहे। लेकिन जो खाना है आप उसने क्या क्या आपको आपको नरिश किया है, आपको नरिशमेंट दिया है। हम हर रोज स्नान करते हैं, किसी ने कहा स्नान करने से क्या लाभ? स्नान किया लेकिन अगले दिन फिर से मैं मल आ जाता है फिर से, लेकिन फिर भी हम स्नान करते हैं। वैसे ही कृष्ण कहता है, भूल भी जाएंगे लेकिन कुछ न कुछ लग जाता है, चिपक जाता है घी के समान। और अंतिम समय सब कुछ याद आ जाता है जो भी हमने सुना था, ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। और इसलिए हमको कृष्ण कथा सुनना है ताकि मृत्यु के समय भगवान के दिव्य लीलाओं का चिंतन करते करते हम शरीर को छोड़ देंगे, इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने छोड़ा था। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्री प्रभुपाद जी की, समय हो गया 15 मिनट लेट हो गया। रोहिणी कुमार को जाना है जल्दी, मैं उनके साथ जा रहा हूँ, उनका संग लेने के। इसे प्रसाद भी खिलाते हैं, प्रसाद के लिए ऐसा ही है, लोग जानते नहीं कि प्रसाद खिला रहे। प्रसाद खिलाना चाहिए पहला, अगर प्रसाद है, अगर जान न होने पर भी, जानकारी न होने पर भी उसका लाभ हो जाता है। कोई प्रश्न नहीं? अश्रद्धालु को कृष्णाम की महिमा का प्रचार करना, महिमा मत बताओ लेकिन कृष्णाम तो दो।
बंजर भूमि हो तो वहाँ पर,
तो इसीलिए ना हम लोग भी बंजर ही थे ना, ये तो बता रहे थे हम लोग भी बंजर ही थे। इसमें से कौन कह सकता है कि मैं भक्त बनने वाला था? मैंने प्रयास किया भक्त बनने के लिए, अलग अलग पर्वतों पे गया गुरु ढूंढते हुए, अलग अलग तीर्थ स्थान भटक रहा था, ऐसा कोई नहीं। कितने सारे मुंबई आते केवल फिल्म हीरो बनने के लिए, और बाद में हरे कृष्ण मंदिर में ब्रह्मचारी बन जाते। कितने लोगों की ऐसी कहानी, वो कभी मंदिर में बॉम्बे कोई आता नहीं भक्त बनने के लिए। हम देखते हैं लोग अमेरिका जाते हैं पैसा कमाने के लिए, यूरोप जाते हैं। जैसे एक किसी व्यक्ति से मिले थे जयपुर में, जयपुर के निवासी है, वो कह रहे थे कि मैं राधाबाई मंदिर से इतना निकट रहता था 3 मिनट दूरी पर, जब हमारे परिवार के लोग बाहर से आते तो उनको मैं ले जाता था लेकिन कभी भी दर्शन नहीं लिया। बोला मैं तो इधर का ही हूँ, कभी भी लेंगे दर्शन। और जब वो लंदन आ गए ये सोचकर नहीं कि अरे लंदन जाना है फिर उधर मुझे कोई याद दिलाएगा तू जा राधा गोविंद का दर्शन ले, राधा गोविंद इतने महत्वपूर्ण लीटी है। लंदन में आ गए किसके लिए? पाउंड के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन वहां कोई भक्त से मुलाकात हो गई, भक्त बन गए। उन्होंने पूछा हमको कहाँ के हो? जयपुर के। जयपुर के हो? राधा गोविंद मंदिर गए थे क्या? राधा गोविंद मंदिर? अरे तुम कहाँ का? मैं मुंबई का हूँ, तुमको कैसे मालूम राधा गोविंद मंदिर के बारे में? तब उन्होंने सुना राधा गोविंद मंदिर क्या है, तो मुझे कह रहे थे कि प्रभु जी ने इतना साल रहा लेकिन एक बार भी मंदिर नहीं गए। देखो रूप गोस्वामी का मंदिर एक बार भी नहीं गए। और लंदन नहीं आया, लंदन आया किसके लिए? ये याद कराने के लिए नहीं कि मुझे राधा गोविंद मंदिर जाना है, लंदन में आया पैसा कमाने के लिए। लेकिन भक्तों ने याद दिलाया। फिर अगले समय जब वो गए जयपुर, सब बैग फेंक दिया घर के अंदर और भागे राधा गोविंद मंदिर को दर्शन करने। इसलिए सब बंजर भूमि है, कलयुग मतलब सबके सब बंजर ही है। कलयुग का शरीर, कोई इच्छा नहीं आध्यात्मिक जीवन करने के लिए, कोई अब कर रहा हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, सबको वितरण किया, सबको दिया। इसलिए योग्य है योग्य नहीं है आप कैसे जानते हो? वो बीज देते रहना, वो किसी न किसी समय है वो क्या होगा, वो स्प्राउट हो जाता है, वो आ जाता है। बहुत कम, बहुत विरल लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर भगवान के खोज में जाते, लेकिन बाकी सब लोगों के पास खुद गुरु और उनके शिष्यगण इस्कॉन में 90% 95% किसने सोचा था भी नहीं कि भक्त बनना है। इसमें से कितने लोगों ने सोचा था कि मुझे हरे कृष्ण का भक्त बनना है? ब्रह्मचर्य बनना तो छोड़ ही दो, किसने भी नहीं सोचा था। यही आश्चर्य की बात है। तो इसलिए अश्रद्धालु को कृष्ण की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन कृष्ण नाम तो देना चाहिए। इतना तो कह सकते हैं, अरे कम से कम जप कर, निर्लय जप कर अगर आपका मित्र हो तो। ऐसा ही होता है कभी कभी, ठीक है ये मित्र बोल रहा है इसलिए जप करेंगे। जैसे हमारे मंदिर में कोई डिवोटी थे, उनके मित्र थे, रावड़ी लोग, सब लालबाग के रावड़ी लोग थे वो लोग। तो उनको किसी ने कहा कि अरे आजा मंदिर में, वहां बहुत सारे लोग डांस करते, लड़कियां भी डांस करती है, तो उन डांस देखने के लिए आ गए। अभी वो इतने गंभीर भक्त है बहुत सारे, उसमें हर संडे हरिनाम करते हैं लोग। उनका कोई इच्छा नहीं था कि वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे लेकिन माया का दर्शन करने के लिए आने वाले थे, लेकिन वो परिवर्तित हो गए। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं जो प्रभुपाद जी स्वयं कहते अपनी कथाओं को, उनके भक्त उनके मित्र ने जबरदस्ती से ले, प्रभुपाद जी जो महान भागवत है उनकी भी इच्छा नहीं थी जाने देखने की। उन्होंने बहुत साधुओं को देख लिया, सब ढोंगी लोग है, गांजा पीते हैं, बीड़ी फूकते हैं, मेरे पिताजी उनसे अच्छे नहीं जाना चाहते। तो उनके मित्र ने क्या किया, नरेंद्र ने जबरदस्ती खींच कर लेकर गए उनको, उतना ही किया उन्होंने। फिर आगे वो आगे नरेंद्र मुनि तो बड़े भक्त नहीं बने, लेकिन उन्होंने एक काम किया, उनका देखो कितना बड़ा क्रेडिट है, एक कोई भक्त बनाया भक्त बनाया जो पूरे दुनिया को भक्त बना रहे, तो उनको सारा क्रेडिट मिलेगा। प्रभुपाद जी को लाया वो क्रेडिट, एक को बनाया बस, सबका क्रेडिट मिल रहा है उनको। सब लोग उनको, कृष्ण की लीला है, भगवान ने उनको यूज किया, लेकिन जबरदस्ती से लेकर आए प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने कहा सही जगह पर लेकर आए मेरे को, भगवान श्री चैतन्य देव का जो ज्ञान है सही हाथ में है। इसलिए हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु, उनको किसने भक्त बनाया? उनकी कोई इच्छा नहीं थी भक्त बनने की। जब उन्होंने देखा ये अनंत देव प्रभु को जो बहरे थे, डेफ थे, बोलना नहीं आता था, और राधा गोपीनाथ प्रभु इस लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे, उनको लगा रहे तो अमेरिकन डेफ लैंग्वेज बोलता है, तो अगर मैं इसके साथ फंड करूंगा तो मेरा और एक्सपर्ट ही बढ़ जाएगा, फिर ज्यादा अच्छा जॉब मिलेगा। तो जब वो आए उनसे मिले, इन्होंने क्या किया, उनको बहरा होकर भी प्रीच किया, तुम शरीर नहीं है, मुकम करो थी बात चालक। तो सही में श्लोक उनको लाभ है, वो मुक्त है, बोलना नहीं आता था, लेकिन उनको प्रचार किया राधा गोपीनाथ प्रभु। और देखो अभी कितने लोगों को गीता, जहां भी हम जाते हैं, हम लोग यूरोप में गए थे, अमेरिका में गए थे, तो कितने सारे लोग वो भगवदगीता का जो कोर्स है वो लोगों को वितरण करते हैं। हाल ही में कोई न्यूयॉर्क से आया, वो इतना कोई रेगुलर भक्त नहीं है, उन्होंने फोन किया मंदिर में, वो कहने लगा मुझे राधा गोपीनाथ प्रभु से मिलना है। बोला क्यों, मैंने उनका गीता का कोर्स सुना हूं और मैं अभी आंध्र प्रदेश जा रहा हूं, लेकिन मिलकर जाना, टैक्सी लेकर मंदिर आ गया मिलने के लिए। अब उनकी कोई इच्छा नहीं थी बोलने की, कृष्ण कथा श्रवण करने की, लेकिन डेफ ने उनको सुना है कृष्ण कथा। हाल ही में भक्ति चरण महाराज ने लंदन में किसी को दीक्षा दिया, एक डेफ को, और उसको हरि बोल आवाज से कोई सुनाई नहीं देता। तो डिवोटी ने कहा कि चलो अभी सब लोग हरि बोल कैसे बोला जाता है उनको, मैंने ऐसा ही मिला क्या, हरि बोल हरि बोल, तीन बार उनको उन्होंने स्वागत किया, तो उसको समझ में आ गई कि मेरा दीक्षा हो गया, अभी नाम लिख के देना पड़ा उनको। लेकिन फिर भी ये भी एक डिवोटी कितने सारे डेफ लोगों को प्रचार किया हुआ है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करेंगे, अभी सोलह माला जप कर रहे हैं, दीक्षा भी ले हुए। तो इसलिए ये है विचित्र, ये इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं अगर आपको अद्भुत क्या इसको जानना है तो क्या करो, अपनी बुद्धि, अपना जो बुद्धि है उसको श्री चैतन्य देव की कृपा को जानने के लिए लगा, इधर उधर मत लगाओ अपने बुद्धि का, उसको किसके लिए इस्तेमाल करो, उपयोग करो, उसको महाप्रभु की कृपा को जानने के लिए उपयोग करो। और जैसे ही आप प्रयास करोगे अब क्या होगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि दया क्या है, इनकी दया क्या है, जो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं वो भक्त बन गए, बड़े बड़े संत बन गए। अमेरिका में हम देखते हैं प्रभुपाद जी के शिष्यगण गुरु बन गए, दूसरों को दीक्षा दे रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हरे कृष्ण मंत्र का माला हाथ में जप लेंगे, जप करेंगे। हम देखते हैं उधर जो जिनका परिवार, किस परिवार से आए थे वो लोग, वो अभी हरे नाम का जप कर रहे हैं, दूसरों को दीक्षा भी दे रहे। ये कैसे संभव है, केवल महाप्रभु की कृपा से, योग्य न होने पर भी योग्यता को प्रदान करना। या हम कॉलेज में डीवाई पाटिल कॉलेज में एक तो पैसा दो एंड तो मार्क्स होना चाहिए तभी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन ये महाप्रभु की यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। फिर भी ज्ञान उससे बढ़कर है, कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। और इसके इस ज्ञान को पढ़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, परीक्षित महाराज जैसी। लेकिन फिर भी ये ज्ञान हमको वितरित किया जा रहा है, ये किनकी कृपा है, ये श्रील प्रभुपाद जी की, चैतन्य महाप्रभु की और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जबरदस्ती से। वो नम्रता है, कल प्रभु जी एक आर्टिकल पढ़ा रहे थे, नम्रता क्या है कि देखना कि इसके अंदर ये असली गुण है, इसका स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना, उसको देखना ये नम्रता। नित्यानंद गुरु ने जगाई मदाई में देखा, क्या देखा, शराबी नहीं देखा, रेपिस नहीं देखा, उन्होंने देखा ये कृष्ण के नित्य सेवक है, इनको सेवा में लगाना ही मेरा कर्तव्य, ये नम्रता। इसलिए प्रचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देख करके हर एक जीव वैष्णव है। तिलक देखना, उसका गले में कंठी देखना, धोती कुर्ता देखना और सिक्का देखना, ये उसका स्वभाव है क्योंकि वो वैष्णव है जीव स्वाभाविक रूप से, ये हम भूल जाते। इसलिए महान वक्त इसको देख रहे और इसके कारण वो सबको प्रचार करते बिना कोई भेदभाव से, और उनकी इच्छा है इसलिए हम भक्त हैं। हमारी इच्छा इसलिए नहीं है, हमारी इच्छा है कि गुंडा बन जाए, डाकू बन जाए, लेकिन उनकी इच्छा है कि इसको भक्त में परिवर्तित करना, वो ऐसी आशा रखते हैं और इसके कारण हम भक्त बन गए। इसलिए भगवान ने जैसे दुर्योधन को भक्त बनाया, अल्टीमेटली भक्त बनाया उसको, कैसे बनाया, सर्जरी करके भीम के द्वारा, मर गया भगवान के सामने, उसका भी उद्धार हो गया। श्री प्रभुपाद की तुरंत श्रीमद्भागवत।